ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 6 श्लोक संख्या श्लोक संख्या 5 प्रह्लाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। ततः जतते जतेत कुशलः खेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम् ततो जतेत कुशलः खेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम् ततो जतेत कुशलः खेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम् ततो जतेत कुशलः खेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्। ततो जतेत कुशलः खेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्। ततो जतेत कुशलः खेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्। ततो जतेत कुशलः खेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्। ततो जतेत कुशलः खेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत कुशलम्। माता है। ततो जतेत कुशल हेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्। शब्दार्थ ततः अतएव जतेत प्रयत्न करना चाहिए, कुशलः बुद्धिमान मनुष्य जो जीवन के अंतिम लक्ष्य में रुचि रखता है, खेमाय जीवन के असली लाभ के लिए या भवबंधन से मुक्ति के लिए, भवम आश्रितः भवम आश्रितः जो संसार में है, शरीरम शरीर, पौरुषम पुरुष का, यावत जब तक, न नहीं, विपद्येत असफल होता है, पुष्कलम हृष्ट पुष्ट। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद अतएव इस संसार में रहते हुए भवमाश्रित भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पृष्ठ रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। कृपया दोहराइए। अतएव इस संसार में रहते हुए भवम आश्रितः भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पृष्ठ रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। तात्पर्य जैसा कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय की प्रारंभ में कहा है, कौमार आचरत प्राज्ञ। प्राज्ञ शब्द उस व्यक्ति को बताता है कि जो अनुभवी है तथा भले बुरे का पहचान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्ली के तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भवमाश्रित के स्थान पर भयमाश्रित पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहे जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें निष्कर्ष वही निकलता है कि भयमाश्रित सूचित करता है कि भौतिकवादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण है, क्योंकि पद पद पर डर बना रहता है। भौतिकवादी जीवन चिंता तथा भय व भयम से पूर्ण है। इसी प्रकार भवमाश्रित पाठ स्वीकार करने पर भवम अनावश्यक झंझट तथा समस्या का सूचक है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मनुष्य भवम में आग पड़ता है, अर्थात भवसागर में पड़ता है, जहां वह निरंतर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से चिंतित रहता है। इस तरह मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। मानव समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार के सामाजिक प्रणाली में विभक्त तो हुए हैं, किंतु हर एक व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो, यदि कोई भक्ति के बिना रहता है तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र होने का कोई अर्थ न निकलता। कहा जाता है स्थानात भ्रष्टा पतंती अध। कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, कृष्ण भावनामित के अभाव में उसका पतन निश्चित है। विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है। यह विधान है, मनुष्य को अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर हृष्टपुष्ट रहता है। अतएव हमें इस तरह रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहें, जिससे हम जीवन लक्ष्य एवं समस्याओं से भरे हुए जीवन के बीच समस्याओं के भरे हुए जीवन के बीच अंतर कर सकें। विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीखकर इस तरह से कर्म करना और जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्पादपल्लवजुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्दी प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ततो जतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलम्। अतएव इस संसार में रहते हुए भवमाश्रित भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्टपुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रभुपाद ने कहते कि इस अध्याय के सबसे पहला श्लोक जो कहता है कि कौमार्य आचरत प्राज्ञ, कौमार अवस्था बचपन से ही 5 साल की उम्र से ही भक्ति का शुभारंभ कर देना चाहिए हैं? क्योंकि आचार्य लोग ने यही मत देते हैं कि जैसे सिद्धर स्वामी अपने टीका इसी श्लोक के पर लिखते हैं कि भयम आश्रित संसारंग प्राप्त पुरुष रूपंग शरीरंग जावत पुष्कलंग अस्ति न विपद्येत जावत है। क्योंकि ये संसार भय आश्रित, प्रभुपाद तात्म लिखते कि श्लोक में जो ओरिजिनल शब्द आता है भवम आश्रित, भवम आश्रित को अन्य अन्य आचार्य लोग ने कि श्रीधर स्वामी और अन्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये सब ये शब्द को किस रूप में उच्चारण किए हैं, इसको भयम आश्रित शब्द श्री प्रभुपाद तात्पर्य लिखे इस शब्द का भव आश्रित शब्द कहीं कहीं पर आचार्य लोग ने इसको भयम आश्रित भी स्वीकार किया है। तो उभय इसलिए भयम आश्रित संसारंग प्राप्त, ये जो संसार है सब समय भय के यहां पर रहोगे तो जो भी रहता है संसार में सब समय भय में ही रहता है। जय श्रीषि गौर नेता की जय, श्रीषि राधा दास बिहारी ललिता विशाखा की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। इसलिए भयम आश्रित संसारंग प्राप्त, किसी ना किसी कारण से यदि हमें संसार में गिर गए हैं तो हमेशा भयभीत रहते हैं। ये भवसागर कैसे हैं, ये पवर्ग है, ये जो आध्यात्मिक जगत वो अपवर्ग मुक्ति है। तो ये पवर्ग का अर्थात परिश्रम करना पड़ेगा, जो भी संसार में रहता सभी को परिश्रम करना पड़ता है। कब तक परिश्रम करता है भौतिकवादी व्यक्ति, मुख से फेंड निकालने तक, से गद्दा कोई भेष को देखें बहुत ज्यादा लोडिंग देने से जो चलता होता मुख से फेंड आ जाता है। तो भवसागर में भाई भयाश्रित संसार में रहकर, जो संसार में केवल भय ही सब समय व्यक्ति भयभीत रहता है, किसी मुहूर्त में कुछ भी हो सकता है उसको सब समय इसलिए भय रहता है, मुख से फेण आने तक परिश्रम करते रहता है। किसके लिए, किसके लिए परिश्रम करता है, सेंस गार्टिफिकेशन की जो मूल वस्तु जिसके माध्यम से सेंस गार्टिफिकेशन होता है वो क्या है, पैसा है, धन, मनी इज स्वीटर देन हनी, स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन, सूर्य से भी अधिक उजाला दिखाई पड़ता कोई भौतिकवादी व्यक्ति को धन। तो इसलिए तब तक परिश्रम करता है मुख से फेंड निकालने तक प फ ब, लेकिन इतने सारा परिश्रम करके सारे बेकार जाता है, इसे व्यक्ति इतने जो धन कमाता है परिश्रम करके है, लेकिन इस धन का प्रकृति में उपभोग कौन करता है, उसके परिवार के सदस्य, उनके संबंधी, उसके रिलेटिव, यही सब इसकी खा जा लूट लेते हैं, यही लोग असली डकाते हैं। सब भागवत कहता है कि यही जो लोग ये असली इसके परिश्रम का सारा फल को खा लेते हैं। आप कोई व्यक्ति परिश्रम माने बहुत धन कमाए, घर पर कोई सर्विस होल्डर हो या बिजनेसमैन, जिस दिन इसके पास में पैसा आता है, आपको हर कृष्ण वाला को यदि पता है, अभी धरो कुछ फंक्शन आ रहा है नृसिंह चतुर्दशी या कोई जन्माष्टमी में गए डोनेशन देने के लिए, मांगने के लिए गए, थोड़ा पैसा दे दो मंदिर के लिए, भगवान की सेवा के लिए, मंदिर में आओ इन्वाइट करो, वो बोलेगा अरे इतना परिश्रम किया मुख से फैन निकलने तक पैसा ऐसा ही आ जाता है हाथ में, कितनी परिश्रम करना पड़ता है उसके लिए पैसा धन आने है संग्रह करने के लिए। अरे ये तुम्हारे बेकार के लोग घूमते घूमते आके बोले पैसा दो, पैसा दे इतने आसान से, प्राण से भी अधिक प्रिय है उसको लगता क्या, पैसा धन नहीं देता है, लेकिन उसके अपने पत्नी यदि आ जाएगी जिस दिन धर्म इसको पैसा मिलने वाला पता है, तो इसलिए पहले से वो गेट के पास खड़े रहेगी, कब आ रही, जब घर में प्रवेश करते ही वो हाथ डालेगी उसके जब में और सारे पैसे एक साथ निकाल लेगी, तो अभी इसके मुख में मुस्कान आ जाता है, तो मुस्कान आ जाता है, देखो इसको देना भी नहीं पड़ा, वो कितनी प्यार करती मुझे अपने हाथ से ही निकाल के ले गई है? तो संसार की ये स्थिति है। तो इसलिए भयम आश्रित पे संसार में पफ ब, जो धन कमाया हुआ बेकार में ऐसे ही जाता है, सारे इसकी संबंधियां से लूट लेते हैं, तो इनके लिए काम ऐसे परिश्रम करके धन कमाता, लेकिन अंतिम में कोई इसके सहारा नहीं देता है, जब तक धन है सभी लोग आदर करते हैं, संसार में धन नहीं है तो कोई आदर नहीं करता है। ये माया के नग्न रूप प्रभुपाद ने कहे थे, मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है, जब धन था मेरे बहुत मित्र थे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मुझे आदर करते, जब धन नहीं रहा सभी लोग सोचे कि बेकार का आदमी है, कोई मुझे देखा भी नहीं है? तो इसलिए प फ भ, यदि धन मिला है तो फिर सबसे भयभीत रहता कि धन को कैसे बचाएगा, कैसे सुरक्षित रखेगा, धन और स्त्री दोनों में सब समय भयभीत रहता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि किसके पास एक सुंदर स्त्री भी है वो भी इसकी शत्रु है, है? शत्रु कौन कौन है व्यक्ति का? ऋणं कृत्वा पिता शत्रु। यदि कि पिता कर्जा करके धन बहुत कर्जा करके छोड़ गया है तो लड़का को इसको इसको पेमेंट करना पड़ता है, तो उस प्रकार पिता लड़का के लिए क्या है? शत्रु है। बिना कारण से वो धन ऐसे करके एक इंद्रिय तृप्ति करके गया और इसका लड़का को इसका पेमेंट करना पड़ेगा। ऋणं कृत्वा पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, माता जी व्यभिचारिणी है, और माता च व्यभिचारिणी और रूपवती भारिया शत्रु, ज्यादा सुंदरी स्त्री यदि किसकी है तो वो भी इसके शत्रु बनता है, कि उसकी पति और कई पुरुषों की और उसकी नजर रहता है उसके प्रति, है जैसे रावण की नजर रहा किसके प्रति? सीता के प्रति है, तो इसलिए वो इतने बड़े सारे रामायण सृष्टि हुआ है। तभी इसलिए कहते हैं रूपपति भार्या शत्रु, पुत्र जति अपंडित, पुत्र यदि मूर्ख है तो वो भी शत्रु है, है? इसलिए सबसे भयभीत रहता है, धन और स्त्री को बचाने के लिए भयभीत रहता है इस संसार में। बैंक में भी रख देता है, उसमें बैंक पैसा भी आजकल वो भयभीत रहता है, उसको छुपाना चाहता है क्योंकि टैक्स लग जाता है। आज गवर्नमेंट को पैसा कहीं नहीं छुपा सकता, कहीं भी पैसा रहेगा तो वो पता लगा लेगा कौन, गवर्नमेंट, किसलिए कि बैंक को स्टेटमेंट देना पड़ता है, गवर्नमेंट को सारे दे, कहीं भी किसी बैंक का सेक्रेट नहीं रखते हैं, है? सब दे देते हैं। तो इसलिए पैसा बचाने के लिए भी हमेशा बोला इतने परिश्रम करके कमाया और गवर्नमेंट ले रहा है, तो इसलिए सबसे भयभीत रहता है। प फ ब भ, ऐसा ही भयभीत अवस्था से कई प्रकार की चिंताग्रस्त होते हुए अंतिम में इसको क्या कबलित कर ला है? म, मृत्यु कबलित कर लेता है, मृत्यु सर्वहर श्याम। इसलिए भयम आश्रित संसारंग प्राप्त, जो जीवात्मा इस संसार में, सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं कि जो भय को आश्रित किया है संसार में, भव संसार में इसको प्राप्त किया, जन्ममृत्यु संसार में आया, पुरुषंग रूपंग शरीरंग जावत पुष्कलंग अस्ति, ये पुरुष का शरीर जो मनुष्य शरीर है जब तक पुष्कलंग, पुष्कलंग अर्थ है हृष्ट पृष्ठ है, तगड़ा से हृष्ट पृष्ठ है, और जब तक किसी दूसरा विपद नहीं आया बा अच्छे बुरा विचार करने की शक्ति उसके पास है, विपद दे तो जाते तो जब तक और कोई दूसरे विपद, जराग्रस्त विपद क्या है? जराग्रस्त है, वृद्ध हो जाना या रोगग्रस्त करना, रोग और जरा व्याधि से ग्रस्त हो जाना, यही विपद है। इसी प्रकार जब तक जरा और व्याधि कबलित नहीं किया तब तक वो किसके सारा शुरुआत कर देना चाहिए? भक्ति का शुरुआत कर देना चाहिए। जीव गोस्वामी कहते क्रम संदर्भ में इसका अर्थ क्या है, जब तक विपद नहीं आया और भक्ति का शुरुआत कर दें तो इसका अर्थ क्या? कहते कि ऐसे ही नहीं कि वृद्धावस्था, इसके अर्थ वो कहते कौमारम इत्यर्थ या कौशर कैश्वर इति क्वचित, कभी कभी कैश्वर अवस्था से, लेकिन मुख्य अर्थ है इसकी कब से भक्ति स्टार्ट करना चाहिए? कौमार अवस्था में, बचपन से। ये सारे अध्याय में जो श्लोक है ये मूल श्लोक दे, प्रथम श्लोक को ही सपोर्ट करने के लिए सारे अन्य श्लोक से दिया गया है, आचार्य लोग यही कहते। पहला श्लोक खड़ा कि प्रहलाद महाराज ने कहे थे कि कौमार आचरत प्रज्ञा, बचपन से क्यों भक्ति शुरुआत कर देना चाहिए, प्रहलाद महाराज ने कहा, उसको सपोर्ट करने के लिए सारे दूसरे श्लोक है, इसको आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहते कि इसका अर्थ जीव समय कौमार अवस्था में भक्ति शुरुआत कर देना चाहिए या कभी कभी कैश्वर है इत्यर्थ, कैश्वर इति क्वचित, कभी कभी कैश्वर अवस्था में भक्ति किया जा सकता है, नहीं तो अन्य अवस्था में इतनी सुरक्षित नहीं है भक्ति का प्रारंभ करना, लेकिन इस अवस्था में भक्ति किया जा सकता। प्रभुपाद ने श्रीमद भगवद गीता के जो छठा अध्याय की 13 नंबर 14 नंबर श्लोक के तात्पर्य में जो डेफिनेशन है वहां पर लिखते हैं कि भक्ति तब तक शुरुआत कर देना चाहिए जब हमारा मन में क्या सेक्स डिजायर उत्पन्न न हो, जब तक हमारे मन में संभोग की बारे में आप कुछ नहीं जानते, क्या है पुरुष की है स्त्री की है संभोग की ज्ञान, जब तक लस्टी डिजायर हमारे मन में आया ही नहीं, हम जब पता ही नहीं लगाए को क्या है ये इसके बारे में, कि 5 साल के बच्चे के मन में ऐसी कोई भावना नहीं होता है, वो कुछ जानता नहीं है क्या है पिता स्त्री क्या पुरुष के उनके क्या संभोग संबंध है संबंध की बात, इसको कोई नॉलेज नहीं होता है। इसी अवस्था से ही भक्ति की शुरुआत कर देना चाहिए जब तक ये नॉलेज नहीं है, नहीं तो ये जस्ट लस्टी डिजायर बहुत बड़े बाधक है। यही शत्रु महावाह काम और रूप सुदुष्करण, यही शत्रु है, इसको पहचानो, इसको इसको जीतो। चलिए यदि बचपन में भक्त जो बच्चों को यदि ट्रेनिंग ठीक से दी जाए ब्रह्मचर्य पालन करने, तो फिर वो उसको जब संसार के बारे भक्ति की महिमा को समझे, तो फिर बड़े होने से भी वो बहुत आसान से भक्ति प्रारंभ किया तो शुरू से, फिर वो इस प्रकार यदि किसी भी कारण से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर भी उसकी कोई हानि नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने इनको भक्ति सिखाया था, कब से? बचपन से। प्रभुपाद ने कहे कि मेरे पिताजी गोरमान देव कभी भी नहीं सोचे कि मेरे लड़का क्या बने, कोई बड़ा धनाढ्य व्यक्ति करोड़पति बने या कोई बड़ा बहुत प्रसिद्ध वकील बन जाए, ऐसे कोई सोचे नहीं थे। उन सब समय साधुओं को घर में बुलाकर खिलाते थे और यही कहते थे कि आशीर्वाद दो मेरे पिता मेरे लड़का को, ये जैसे राधा रानी का भक्त बनेगा और भागवत की पढ़ेगा और भागवत का प्रचार करेगा। यही चाहते थे उनके पिताजी। गोरमंद शुद्ध भक्त थे, वो जैसे चिंतन किया, जैसे ही भगवान को डेली प्रार्थना करते थे, साधु संत से जिस प्रकार आशीर्वाद दिलाते थे पुत्र को, वही हुआ। प्रभुपाद ने शुद्ध भक्त बने राधा रानी के, ऐसे ही तो नित्य सिद्ध है, लेकिन फिर भी एक आदर्श निभाए कि राधा रानी के भक्त बने और भागवत का भी प्रचार किए। इसलिए आचार्य लोग कहते भक्ति को प्रारंभ करें, कब से? बचपन से। प्रहलाद महाराज कहे जद्दी बचपन से कोई नहीं पाया, कम से कम कैशोर अवस्था, जीव गोस्वामी कहते कैशोर में थी क्वचित, कभी कभी कैशोर अवस्था से भी भक्ति की जा सकती है जो उसको पर। लेकिन इसके आगे है जब फिर उसको नॉलेज आ गया, स्त्री पुरुष और जो सेक्स डिजायर उसको उत्पन्न हो गए, लस्टी डिजायर सब, फिर पहले ट्रेनिंग नहीं है तो फिर वो संसार में फंस गया तो गया है, फिर संसार में फंस गया, उसको शुरू से कोई ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग नहीं है, तो भाई उस व्यक्ति फिर पूरे संसार में मायाग्रस्त संसार में सब समय भयभीत रहता है, भव आश्रित भव संसार में गिर गया, बार बार जन्म संसार में गिर गया और फिर उसको उद्धार होने का कोई मार्ग नहीं मिलता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति को ऐसा ही बचपन से शुरुआत कर देना चाहिए, विशेष रूप में जब तक हमारा शरीर वृद्ध अवस्था को जराग्रस्त नहीं हुआ या रोगग्रस्त नहीं हुआ है, तब से शुरुआत करना चाहिए। इसीलिए ऐसे ही भय व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भयम आश्रित इति हरिभजनम अभावे। किस लिए भय सब समय रहता भयभीत? हरिभजन अभावे, क्योंकि हरिभजन नहीं करता इसलिए भयभीत रहता है। यदि इसको बचपन से ही हरिभजन का ट्रेनिंग दिया गया, कैशोर में भी हरिभजन ट्रेनिंग के बाद फिर हरिभजन करते रहेगा है, तो गृहस्थ जीवन में आने पर भी जब संतान उत्पन्न करना चाहेगा तो 50 माला करना उसके लिए कठिन नहीं होगा। प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन है, तो गृहस्थों को बच्चा चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा उनको? कम से कम 50 माला जपना पड़ेगा इनको, 50 राउंड कम से कम जपना चाहिए। यदि पहले से ट्रेनिंग है तो गृहस्थाश्रम में जाकर फिर वो कर पाएगा 50 माला, तो पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं है तो गृहस्थाश्रम में आके क्या करेगा? वो जपेगा? 2 माला जपना मुश्किल हो जाए, 50 माला कहां से जपेगा वो है? तो फिर बार बार जन्म संसार में फंस जाएगा। स्थानात भ्रष्टा पतंती अध, इसलिए अपने स्थान से फिर नीचे गिर जाएगा, बार बार जन्म संसार में भटकते रहेगा। इसलिए श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते कि भक्ति का तो तभी आरंभ कर देना चाहिए जब हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, हमें अच्छा बुरा विचार करने की शक्ति हो, जब हमारी इंद्रियां सतेज है उसी समय में। कोई कोई कहते नहीं 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 भक्ति कब करना चाहिए? बूढ़े उम्र में, काल जैसे महाराज ने ही चोलीनेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उदाहरण दे रहे थे, वो जर्नलिस्ट था, इंडियन जर्नलिस्ट, अमेरिका में क्या कहता था, ये भक्ति क्यों अभी तो वो इनको सब क्यों सब भक्ति करने सिखाते हैं, जो संन्यास दे देते हैं इनको अभी किया हूं ये के ऐसा क्यों, ये तो बुढ़े होने से करना चाहिए भक्ति है। तो प्रभुपाद ने सोचा बोले बुढ़ा का डेफिनेशन क्या है, बुढ़े हो जाने का डेफिनेशन क्या है, जो मृत्यु के बहुत निकट है। तो उसको प्रभुपाद ने कहा कि तुम गारंटी दे सकते कि तुम गारंटी दे सकते कि तुम माने मेरे पहले तुम्हारा मृत्यु होगा कि नहीं, तुम गारंटी दे सकते हो? तो बोला नहीं, इसलिए कोई भी मृत्यु किसी भी कभी भी मृत्यु किसी को कबलित कर सकता है। तो इसलिए हमें भक्ति को जब हम हृष्ट पृष्ट शरीर है अर्थात शुरुआत भी कर दिया था, कोई यदि ये बचपन से नहीं किया बा, कम से कम कोई कैसर अवस्था में, जीव गोस्वामी कहते कैसर अवस्था में स्टार्ट कर देना चाहिए, ये भी नहीं किया तो फिर जब से इसको नॉलेज हुआ तब से प्रारंभ कर देना चाहिए, तुरंत प्रारंभ करना चाहिए है? नहीं तो जन्मृत्यु संसार से भटकते रहेगा। प्रभुपाद ने कहते कि ये वर्णाश्रम सिस्टम में जो दिया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण और आश्रम जो बताया गया, संन्यास और वानप्रस्थ और गृहस्थ ब्रह्मचारी, ये जो स्टे, ये जो चार वर्ण आश्रम, किसी वर्ण आश्रम में रहकर यदि व्यक्ति भक्ति नहीं किया तो उसका जीवन बेकार है। ये सारे वर्णाश्रम धर्म की जो लक्ष्य है कि भगवान हरि की भजन करना है। मांगी पार्थ व्यपाशित्य स्तेपीसु पाप जनय स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेपी जानती परांगतिम परांगतिम। मुझे आश्रय करके कोई भी स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी यदि मेरी भक्ति जोग को स्वीकार करके मेरी भजन किया तो वो संसार में जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो जाएगा, जीवन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज महाजन है, उन्होंने हमको शिक्षा दे रहे, लेकिन वो भी वो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। वो पांच साल के बच्चे, इनको सारे अभिमन एक ऐसे ऐसे अनुभव कहां से आ गया जीवन के, लेकिन उन्होंने केवल रिपीट कर रहे हैं। किसके आदेश को? जिन शिक्षा उन्होंने नारद मुनि से प्राप्त किए थे परंपरा से, तो वही शिक्षा को केवल जो सुने थे गुरु से उसी को रिपीट करके बता रहे हैं। हम जैसे प्रचार करने जाते तो इसी प्रकार रिपीट करना चाहिए। किसकी शिक्षा को? श्रील प्रभुपाद जी ने जो शिक्षा दिए हैं, जो शिक्षा हम उसी को ही बोलना चाहिए। जहां पर आप स्पेकुलेशन करना शुरू कर देंगे तो वहीं से आपका सभी प्रकार की पथ भ्रष्ट हो जाएगा। पतंती अध भ्रष्टा पतंती अध स्थानात भ्रष्टा पतंती अध। कोई चाहे उच्च वर्ग या नीचे निम्न वर्ग या कृष्ण भावानंद के अभाव में, उसका पतन निश्चित है। इसलिए विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है। यह विधान है, मनुष्य को अपने उच्च पद पर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है, फिर कुत्ता बिल्ली के शरीर में नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी का यही कहना है तात्पर्य में। इसलिए मनुष्य से मानव जन्म जब प्राप्त हुआ तो राधा कृष्ण की भजन करना चाहिए। आचार्य लोग ने यही शिक्षा दी है, मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाई नो। जानबूझकर जहर खाता जो इस मनुष्य शरीर में आकर भी भगवान की भक्ति नहीं करता। इस श्लोक को और सपोर्ट करने के लिए आगे, क्योंकि आचार्य लोग जब टीका लगते हैं पांच नंबर श्लोक से लेकर 12 नंबर श्लोक को एक ग्रुप में लेते हैं, एक ग्रुप के ये श्लोक है कि 5 नंबर श्लोक को सपोर्ट करने वाले और सारे श्लोक इसको सपोर्ट करते। किसीलिए जो प्रहलाद महाराज ने कहे कि जो बचपन से या कम से कम कैसर अवस्था में बा जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, जवान माने इंद्रिया सतेज रहे, तभी भक्ति शुरुआत क्यों करना चाहिए है? तो उसको सपोर्ट करने के लिए अगला श्लोक उन्होंने एक एक करी कहते हैं। पुंस वर्ष सतंगायुर सदार्थ च अजितात्मन निष्कलं यदसौ रात्र्यं सते अंधं प्रपितास्तम। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम आयु कितने साल तक जी सकता है? वर्षं सतः 100 साल बच सकता है, जी सकता है। तो 100 साल परमायु से जिसकी इंद्रिया संयम नहीं है और बस में नहीं कर पाया तो वो ज्ञान बस उसकी आयु वो क्या सोते रहेगा, फिर तमोगुण के अधिकारी होकर 12 घंटे ऐसे सोने ही बिता जाता है। जो 12 घंटा डेली सोता है तो फिर प्रहलाद महाराज कहते कि उसकी उम्र और कितना बच गया, 12 घंटा सो गया सोते रहा तो डेली, तो उसका 100 साल उम्र से 50 साल तो सोने में ही गया, तो 50 साल तो ऐसा ही बीत गया। कैसे? केवल सोने में, निद्रा में बीत गया है? तो इस प्रकार व्यक्ति की तो परमायु से 50 साल बचा और बचा रहा, और भी जो 50 साल आयु उसकी बचा रहा। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीड़तो जाति विंशति जरायाग्रस्त देहस्य यकल्पस्य विंशति। मनुष्य अपने बाल्य काल के कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है, बचपन से 10 वर्ष खेलकूद में ऐसा ही बीत जाता है। और इसी प्रकार किशोर अवस्था में खेलकूद में लगकर वह अगले 10 वर्ष को भी बिता देता है। स्कूल में एडमिशन हुआ फिर बच्चों के साथ खेलकूद इधर उधर आए, मैच पड़ा, कहीं कंपटीशन हुआ, कोई भाषण देने गया है, तो उस समय बड़ा विद्या की विद्या और विलास है, ऐसे करके और 10 वर्ष बिता दिया है। और जो चैतन्य महाप्रभु जैसे भी वो भी विद्यारभिलाष है, विद्यारभिलाष के समय में वो है ऐसे ही अभिनय किए जैसे कुछ भी संसार के प्रति आसक्त लोगों को आर्गुमेंट करके परास्त करना, अपने पंडित्य को दिखाना दूसरों को मैं कितनी बड़ा हूं, इस प्रकार समय व्यतीत करते हुए फिर वो 10 साल बिता देता। अर्थात बाल्य का 10 साल तो ऐसा ही फिर किशोरावस्था के 10 साल भी बीत गया, तो 20 साल उसकी ऐसा ही बीत जाती जिसको मैंने कोई गाइडेंस नहीं है, भक्ति का नॉलेज नहीं है, सदगुरु के आश्रय नहीं लिया है, तो इस प्रकार व्यक्ति का कहते कि 10 वर्ष बीत जाता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में खेलकूद में लगकर अगले 10 वर्ष बिता देता है, इसी प्रकार 20 वर्ष उसके बीत जाते हैं। 20 वर्ष बीत गया इसका, पहले 50 साल गया चला गया था, अभी 20 साल ऐसा ही बचपन का किशोरावस्था का बीत गया, कितने साल और बच गया है, 30 साल बच गया। 30 साल के भी जर्याग्रस्त देहस्य जो वृद्धावस्था रोग रुग्ण हो जाता है शरीर, इसी प्रकार 20 वर्ष चले जाते हैं। इसी तरह वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है तो वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, जिसमें अधिक 20 वर्ष भी निकल गया है। तो प्रैक्टिकल तो हो, फिर 30 साल बचा था, 30 साल से फिर 20 साल ऐसे निकल गया, इसके फिर 100 साल का हिसाब किया जाता है। ऐसे तो आजकल तो ऐसे ही 100 साल भी कोई जीवित नहीं रहता है, बहुत कम है। हमारा ये राधा रास बिहारी मंदिर में एक डिवोटी है 100 साल है, एक डिवोटी है ना, हम कल गया था उनको दर्शन किया था, 101 वर्ष साल हो गया। लेकिन ऐसे ही जीना सबको 100 साल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि 100 साल किसी ना किसी कारण से जीवित रह गया तो फिर ऐसे तो चला गया इसको पशु बचपन की जीवन के प्रारंभ की 20 साल, अंत में 20 साल, 40 साल बीत गया और 50 साल सोने में गया, और कितना बच गया, 10 साल बीत गया। तो वो 10 साल के भी प्रहलाद महाराज कहते कि दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलियसा शेषंग गृहेषु आसक्तस्य प्रमत्य शापयाति ही। और जो 10 साल बच गया जिसकी मन तथा इंद्रियां बस में नहीं है, वह अतृप्त कामेच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है, ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष 10 वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में से अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। अर्थात प्रहलाद महाराज जी कहते कि जिस समय हम भक्ति में नहीं लगाया मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, और इस समय का भक्ति में नहीं लगा, केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा है, तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जानबूझकर जहर खाता है, सारा आत्मघाती है, वही आत्मघाती है कौन, जो मनुष्य शरीर में भगवान की भक्ति नहीं किया है। इसलिए कहना चाहते हैं कि प्रहलाद महाराज पूरी जो विषयी व्यक्ति है संसार में, जो सदगुरु को स्वीकार नहीं किया, भक्ति किया जानता नहीं है, भागवत को भी श्रवण नहीं किया, गीता श्रवण नहीं किया, तो फिर उसके सारा संपूर्ण परमायु बेकार जाता है, वृथा जाता है, क्योंकि अंत में वो फिर नरकगामी हो जाता है, जन्म मृत्यु संसार में फिर भटकते रहता है 84 लाख जोनि में। तो इस वर्ष में अनेक वे वो भक्ति नहीं किया, तो इस प्रकार 100 साल जो भौतिकवादी व्यक्ति सदगुरु की शरण में नहीं आया तो उसके सारे 100 साल ऐसे ही बीत जाता है, इसके जीवन का कोई फायदा नहीं। मनुष्य शरीर में है लेकिन दीपाद पशु है, वो दीपाद पशु ही माना जाएगा, अर्थात पशु के 4 पैर होता है और इसका पास 2 पैर था, लेकिन वो 4 पैर बना देता है, कार के कार खरीद लेता तो 4 पैर है, उसके अंदर बैठ के फिर घूमते रहता दिन भर है, किसके लिए, मनी 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 कहां से मिलेगा, ऐसा ही करके सारा जीवन बेकार बिता देता है। और अंत समय में फिर डॉक्टर को कहता कि अरे डॉक्टर साहब आपको करोड़ों रुपया देता हूं, थोड़ा सा 2 साल बढ़ा दो मेरे परमायु, बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार व्यक्ति का संपूर्ण परमायु वृथा चले जाता है। आगे उन्होंने कहते को गृहेषु उपमान आसक्तम आत्मानम अजितेन्द्रिय स्नेह पाशय दृढ़ बद्धम उत्साहे तो विमोचितुम। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपने पत्नी बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़तापूर्वक बंध जाता है। इसको प्राय में प्रारंभिक वर्ष में इसकी बाल्य अवस्था में कैसर अवस्था में कोई ट्रेनिंग नहीं है, आध्यात्मिक ट्रेनिंग, और जौवन अवस्था में गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर गया तो क्या करेगा वो संसार में संपूर्ण गृहम अंधकूपम। प्रहलाद महाराज आगे पीछे कहे कि वो अंधकूप में फंस गया है, कुछ जानता नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इनकी द्वारा पत्नी बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह में बंधन में फंस गया। ये नहीं सोचता ये लोग मुझे क्यों स्नेह करते हैं, किस लिए स्नेह करते हैं, सारे संबंधी एक व्यक्ति क्यों वो स्नेह करते, क्योंकि वो लेके आता है धन, लेकर आता है सबको भरण पोषण जिसको जो चाहिए वो भी करता था। ऐसा ही कौन वाल्मीकि जी अपने पूर्व जन्मों में यही करते थे, हैं? रत्नाकर की भूमि के स्कंद पुराण में इनके जीवन वर्णन आता है। तो बस लूटते थे लोगों को, जो भी मार्ग में जाता था छुपकी रहते थे जंगल में, सर लाओ क्या रहे, सब इनको जब जरूरत पड़ता था उसको मर्डर भी करते, नहीं ऐसा नहीं देता तो मर्डर करके ले लेते सब, हैं? इतने मर्डर किए थे कि कहा जाता कि वो प्रारंभ से उसके वर्णन आता कि कम से कम इतनी मर्डर किए थे कि दो बोयल का गाड़ी में लोडिंग करके रखते थे, जो ब्राह्मण को सब काट काट के इनकी जेनेऊ सब निकाल के सब लोडिंग करके रखे, दो बैलगाड़ी के भरा हुआ था जेनेऊ के बल। तो नारद मुनि को दया आ गया है, नारद मुनि ने कहे कि क्या होगा इसकी स्थिति, इसको कैसे उद्धार करूं, इसकी उद्धार होना चाहिए नहीं थे, कितनी साल तो अप्रलय नर्क में जाएगा। तो बेचारे हैं बिना बजाते हुए सामने आए, हैं राधिका रमण नाम है, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम है, बिना बजाते बजाते है सामने आए, और आए तो कहे कि निकाल क्या रखा, भाई मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो साधु है, देख एक बिना है बस भगवान के नाम बजा, बोला नहीं ये नहीं चलेगा, है हे कुछ तो देखो पूरा है, कुछ है नहीं इसके पास, बिना है बिना, बोला बिना दे इसको दे दो, इसको भी दे दो, कुछ नहीं तो इसको भी दे दो। तो बोला भाई ये तो नहीं दूंगा, ये तो भगवान के नाम कीर्तन में लग रहा है, है? तो बोला अच्छा, लेकिन नारद जी मुनि कहे, नारद मुनि कहे कि अच्छा तुम थोड़ा सा मेरे बात भी सुनो, एक शब्द तो पूछता हूं, तुम जो इतनी धन कमाता है, इतने कठोर परिश्रम करता है, तो जिनके लिए तुम धन लेकर देता है ये लोग ने तुम जानता कितनी पाप करता है, इतने सारे ब्राह्मण को तुम काटा है इतनी, तो इसकी जो प्रतिक्रिया क्या है, तू अपने नरक में जाएगा, कितनी कष्ट भोगेगा, जब जमदूत तुझे पकड़ के लेके पिटाई करेंगे, बहुत नरक में डालेंगे, रो रो नरक में डालेंगे, जानते हो, थोड़ा सा इसको हिंट्स दिए। तो बोला ऐसा थोड़ी होता है, मैंने परिश्रम किया धन कमाया और उसको सब लोग खाया, मेरा पत्नी भी पढ़ उसका साड़ी अलंकार भोजन में सब कुछ दिया, मेरे माता पिता भी खाते हैं वृद्ध हो गए, बच्चों को भी सब खिलाया है, वो कि मैं अकेला थोड़ी पाप का भोगूंगा, ये सभी भोगेंगे। नारद जी ने कहे कि जाके जिज्ञासा करके आओ वो सब पाप के भोगेंगे कि नहीं, इसको तो कोई शास्त्र ज्ञान नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं था, है? तो फिर बोला अच्छा आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं भी घर चले जाऊं और आप यहां से भाग जाओ, ये नहीं चलेगा, बोले आपका बिना मुझे दे दो और फिर बात में देखेंगे, इसके बाद सोचेंगे। बोला नहीं तुम मुझे बांध दो, हाथ पीछे पेड़ का पीछे बांध कर, दोनों हाथ को ऐसे ही बांध कर पीछे जाओ, यह जंगल में कोई नहीं है, मुझे कोई खोलेगा नहीं, और जरूरत है तुम मेरा बिना भी रखो, और लेकिन मुझे हाथ को पीछे भी बांध के जाओ पेड़ में। तो ऐसा ही किया, पीछे हाथ करके बांध दिया, किनको, नारद मुनि को, बिना लेकर वहां कहीं छुपा के रख दिया, और उसके बाद घर में आया, घर में आके पत्नी की गया, पत्नी के पास में गया, कहा कि हैं तुमको जो इतने सुंदर सुंदर साड़ी में पहनाती हूं, लाती हूं मार्केट से इतनी गहना, और जो कुछ चाहती हो सब कुछ देता हूं, लेकिन मैं कैसे धन लाता हूं जानती हो, मैं ऐसे ही लोग से लूट कर जरूरत पड़ता तो किसको मर्डर भी करता हूं, और ऐसे कर करके धन लेके आता हूं, मेरे जो पाप है तो उसका 50% तो तुमको लेना पड़ेगा ना, तुम लोगे ना इसका आधा, कम से कम शेयर तो कुछ लोगे। पत्नी कहे कि नहीं है? मैं सह धर्मिणी हूं, आप जो धर्म करोगे उसमें 50% मेरा भाग है, पाप में नहीं, कोई शास्त्र नहीं कहा पाप से भाग लेने के लिए, ये कहे कि धर्मिणी सह धर्मिणी तो धर्म से आधा मिलेगा, आप जितने पुण्य कर्म धर्म करोगे उससे 50% मेरा भाग है, पाप में नहीं, ये तो आपका ड्यूटी है, मुझे भी भगवत धाम ले जाना है, ये मेरा काम नहीं है। बोला अच्छा आप इतने सारे में परिश्रम करके धन दे तुम बोले पाप नहीं लोगे, बोला नहीं मैं नहीं, मुझे क्यों तुम्हारा पाप लू, मैं तुम्हारा पाप नहीं लूंगा, ये तुम्हारा काम है, तुम भरता हो मुझे भरण पोषण करना तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा ड्यूटी है। बोला अच्छा मैं बच्चों को यहाँ पर घर में देखभाल कर लेती हूँ, बस ये मेरा काम है। घर में कुकिंग करना, तो आपको जो आते हो खाना आपके लिए रेडी करना, बच्चों को देखना, ये सब मेरा काम है। तुम्हारा किसी कैसे धन लाते हो उसमें मुझे क्या लेना देना। तो फिर गए बच्चे के उन्होंने अपने माता पिता वृद्ध माता पिता के पास गया पूछने के लिए। माता पिता कहेगी बेटा तुम जो छोटे थे हमने तुमको लालन पालन करके बढ़ाए, अभी आम वृद्ध हो गए, ये तुम्हारा ड्यूटी है, हमको आपको हमारा देखभाल करना है। लेकिन तुम्हारा तुम कैसे धन लाते हो, तुम्हारे पाप के भाग तो हम नहीं लेंगे है। तू तो और ये तो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भगीरथ की तरफ तपस्या करके हमको उधार करना चाहिए। कहां से जन्म होते संसार में? पुत्र शब्द का ही अर्थ है कि पू शब्द का अर्थ ही नरक, त्र का अर्थ जो नरक से उद्धार करता पितरों को वो पुत्र है, है? प्रहलाद योग्य पुत्र थे। हिरण्यकशिपु जैसे पिता होने पर भी इन्होंने अपने पिता को भी उद्धार कर दिए। नृसिंहदेव जब आगे जब दर्शन दे कहेंगे कि मेरे धाम में चलो, मेरे दूसरे लोगों को तो लेने के लिए मेरे दूत आज के ले जाते, लेकिन तुम जैसे भक्त को लेने के लिए मैं स्वयं आया हूं, मेरे साथ चलो। तो कहे कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूं। फिर वो पूछे अपने पिताजी के बारे में, पिताजी को आप यदि कुछ देना चाहते मुझे मेरे पिताजी को उद्धार कर दीजिए, आपके द्वेष किया, इतनी अपराध किया आपको, वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, उनके पिताजी उनको इतनी कष्ट दिया, मर्डर करने के लिए प्लान सारे बनाया, लेकिन फिर भी अपने पिताजी की हित चिंतन करते थे। इस कैसे भगवत धाम जाएगा वापस, ये वैष्णव के लक्षण है, पर दुखे दुखी। तब जब नृसिंहदेव कहे कि देखो तुमको ये वर तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, जिसकी परिवार में फैमिली में तुम जैसे पुत्र का जन्म हुआ, त्रिसप्ताह इसके तीनों नहीं सर कितने पीढ़ियां, त्रिसप्ताह होने से 21 पीढ़ियां ऐसे ही मेरे धाम में जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे, ये वरदान तुम मांगने की आवश्यकता नहीं है। पिता माता कहे कि तुम तो ऐसे भक्त भक्ति करके हमको भगवत धाम लेना तुम्हारा काम है, हमारा देखभाल करना तुम्हारा काम है, लेकिन तुमने की कैसे करके धन लाया मरे को इसे हमें क्या लेना देना है, हम तुम्हारे पाप नहीं लेंगे। तो बेचारे बच्चों के पास गया, बच्चों को बोला कि देखो तुम लोग ऐसे ही है, बच्चों को तो पहले मां शिक्षा दे दी, तो कहे कि पापा हम नहीं आपके पाप लेंगे, हमें अभी छोटे हैं, आपको लालन पालन कर रहे हैं, आप जो बुढ़े हो जाओगे फिर हम बड़े हो जाएंगे आपके देखभाल करेंगे, ये हमारा धर्म है, पाप तो हम शेयर नहीं करेंगे। उसका आंख खुल गया है, तो वापस गया और इनके हाथ पीछे जो बांधा था खोल दिया, किनका? और नारद मुनि है, उनकी उपस्थिति में ही इसके सारे परिवर्तन हो गया है चरित्र। उत्तम वैष्णव वही होते हैं, जहां रे देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम, सही तो जानो हो तुम्हें वैष्णव प्रधान। कौन कहा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा। वैष्णव की जो स्थिति को निर्णय करते हुए कौन कनिष्ठ, कौन वैष्णव, कौन मध्यम, कौन उत्तम, ये कुलीन ग्राम के वासियों की प्रश्न के उत्तर देते हुए उन्होंने कहे कि उत्तम वैष्णव वही है जहां रे देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम, जिसको उपस्थिति ही दूसरे को कृष्ण भावना भावित बना देता है। ऐसे ही उत्तम अधिकारी वैष्णव नारद मुनि है और श्रील प्रभुपाद जी है, जिनकी उपस्थिति ही दूसरे को केवल भक्त बना देता है, है? और जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है वो मध्यम। तो कहे कि कनिष्ठ कौन है? जार मुखे एक बार अश्विनी कृष्ण नाम से ही तो वैष्णव करता हार सम्मान, जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारण करने देखा है। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण तीजस्य गीतम मनीषा अध्रियता, जिसके मुख से कृष्ण नाम सुन रहे हो लेकिन विधि विधान पालन नहीं कर रहा है, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो फिर उसको मन में आदर करो, क्योंकि भगवान के नाम ले रहा है, ये कनिष्ठ है, नियोफाइट है। महाप्रभु वही कहे जिसके मुख से कृष्ण नाम सुने उसको सम्मान करो। फिर सेम प्रश्न वैष्णव कौन है पूछे तो फिर कहेगी निरंतर कृष्ण नाम जहार बदने सही तो वैष्णव सेवत ने भजत आहार चरण है, क्योंकि वो वैष्णव जो निरंतर कृष्ण नाम लेता है, निरंतर 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हाँ। लेकिन ऐसे वैष्णव मध्यम अधिकारी जो प्रचार नहीं करता लेकिन दिन रात भजन करता है, तो हम लोग सोचते भजनानंद लोग ही उत्तम है, लेकिन महाप्रभु कहेंगे जो ऐसे ही केवल हरे हरे कृष्ण करता है लेकिन जब 24 घंटे जपता है तो वो मध्यम है, निरंतर कृष्ण नाम जहार वदन है। लेकिन आगे कहे कि फिर सेम प्रश्न वैष्णव कौन है वैष्णव के, फिर कहे कि नहीं ये वैष्णव है उत्तम, कौन? जहारे देखिले मुखे आई से कृष्णाम, सही तो जाना हो तुम्हें वैष्णव प्रधान, वो समस्त वैष्णव में उत्तम है। इसलिए नारद मुनि से उत्तम वैष्णव थे, उनकी उपस्थिति ही इसको कृष्ण भावना बना दिया, किसको? रत्नाकर को वाल्मीकि बनाने में समर्थ हो गया। बा मुर्गारी को भी महान भक्त बनाए। नारद जी ऐसे कितनी पतितों को उद्धार करते हैं। राक्षस कुल में जन्म हुए, प्रहलाद के प्रति भी करुणा किए, तो और मां की गर्भ से ही कृष्ण भावना भावित हो गए। ये उत्तम वैष्णव है। प्रभुपाद जी ने कहे कितने हिप्पियों को भक्त बनाया, जो चारों नियम सब तोड़ते थे, फिर भी इनको भी जाकर भक्त बनाया। ये उत्तम अधिकारी वैष्णव की परिचय है। भक्ति में ठाकुर इसलिए कहते कि उत्तम वैष्णव कौन है न, देखो वो कितनी बद्धात्मा को भक्ति में जोड़ने में सक्षम है, उसके पास प्यूरिटी कितना है, शुद्धता। तो इसी प्रकार नारद मुनि इसको फिर उपदेश दिए। इतना पाप किया था कि इसको हरि पर जो राम नाम भी उच्चारण नहीं हो रहा था, जो सबसे सरल सुलभ नाम है, वो तो आसान से राम बोलना, कृष्ण तो थोड़ा जुकता है, कृष्ण बोलना थोड़ा जुकता क्या जुकता है, हो सकता है नहीं आएगा ठीक से उच्चारण, कोई कृष्ण कोई कृष्ण कोई कई प्रकार कहते हैं उच्चारण, अलग अलग भाषा में अलग अलग उच्चारण हो जाता है। तो हमारे उड़ीसा में से वो कहेंगे, उड़ीसा गुजराती लोग क्या कहते हैं, कृष्ण, महाराष्ट्र के लोग भी, और जो बंगाली हो गए तो कहेंगे कृष्ण कृष्ण, जब राजस्थान में जाओगे लोग कहे कृष्ण, कई प्रकार के उच्चारण में गड़बड़ हो जाता है। लेकिन राम नाम सभी लोग बड़ा सरल है, सब लोग बोलते हैं। वाल्मीकि ने कहे कि नहीं, सॉरी नारद मुनि ने कहे कि तुम तो राम नाम बोल सकते हो, एक शुद्ध नाम लेने से करोड़ जन्म का पाप तत्क्षणात, जैसे रुई की ढेरे में पूरा आग लगाने से एक क्षण में राख हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। जो अत्यधिक पापी पुरुष होते हैं तो उनके मुख से नाम उच्चारण नहीं होता है। मायावादी कृष्ण अपराधी, इसलिए उनकी मुख से कृष्णाम उच्चारण नहीं होता। महाप्रभु ने कहे, ये बनारस में थे, ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था, महाप्रभु को पूछा, मैं गया हूं मायावादी की सभा में जो 10,000 सन्यासी बैठे हैं प्रबोधानंद प्रकाश आनंद सरस्वती के साथ, मैं देखा वो लोग बातचीत करते, लेकिन कभी भी उनके मुख से कोई भी कृष्ण नाम लेने के लिए वो मैं देखा प्रयास करते हैं राम नाम, लेकिन मुख से कभी ना हरिनाम उच्चारण नहीं होता। मैं मार्क किया, वो लोग केवल बोलते ब्रह्म चैतन्य ऐसे ही शब्द कहते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि ये इसके कारण क्या है, मायावादी कृष्ण अपराधी, इसीलिए ब्रह्म चैतन्य चैतन्य कहे निरवधि, हमेशा वो ये ब्रह्म चैतन्य ऐसे ही शब्द उच्चारण करते हैं। वाल्मीकि कहे कि भाई नहीं, वो रत्नाकर कहे कि तुम तो राम बोल सकते हो ना, वो प्रयास किया लेकिन उसके मुख से राम उच्चारण नहीं होते हैं। प्रभु हरिनाम प्रभु अपराधियों के मुख से उच्चारण नहीं होते हैं। बड़े जो अत्यधिक अपराधी टॉप पोजिशन में आ जाते, अत्यधिक पापी व्यक्ति से, तो उन्होंने कहे कि अच्छा कैसे उद्धार होगा इसका, भगवान के नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा तो कैसे उद्धार करूं इसको। तो मरा हुआ वृक्ष को देखा, बोले देखो मर गया, ये क्या हुआ, ये मर गया, तो मर गया ना, मरा तो बोल सकते हो ना, बोलो ना। तो बोला क्या, मरा 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 मरा, बस हो गया उद्धार हो गया उसके, क्योंकि उसके मन में कोई अपराध करने था नहीं, आभास नाम लेकर भी उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर वाल्मीकि ने कहे कि ठीक है अभी बैठ जाओ इधर ही और ए रटते रहो। लेकिन ऐसे ही महाभागवत जैसे नारद जैसे महाभागवत वैष्णव के संग प्राप्त करना इतने आसान नहीं है, बहुत रेयर है। नारद मुनि कभी कभी आते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में, लेकिन आप लोग पहचान भी नहीं सकेंगे, है ना, पहचान पाओगे जब आप जाओगे लंदन में जाओगे, वहां देखोगे राधा लंडनेश्वर मंदिर में वो आसन रखा गया, दो व्यासासन ऐसे रखा गया है अल्टर में, छोटे ऐसे इसी प्रकार आसन थोड़ा ऐसे बड़ा होगा, तो पूरे कुशन के साथ रखा गया है। किस लिए रखा गया, ये प्रभुपाद जी ने एक बार भागवत की कक्षा दे रहे थे तो कक्षा के बीच में पूरे स्तब्ध हो गए थे, समाधिस्थ जैसे कुछ नहीं बोले, कैसे किसी को देख रहे हैं बड़ा आश्चर्यचकित होकर। 10-15 मिनट ऐसे चला गया, सब लोग बैठे बड़े, बाद में जब उस प्रकृतिस्थ हो गए तो पूछे भक्त लोग ने, प्रभुपाद क्या ऐसे क्यों आप रह गए पूरा समाधिस्थ हो गए, जैसे ऐसे कुछ देख रहे थे। तो बोले आप लोग देखा नहीं हमारे मंदिर में आज कौन आए थे, ब्रह्मा और नारद पधारे थे, कैसे संकीर्तन चलता है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, कैसे लोग भक्ति करते हैं, तो उसको देखने के लिए मिलच्छ जवान को कैसे भक्ति कैसे करते हैं, इसको देखने के लिए नारद मुनि भी आते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि आज पधारे थे हमारे मंदिर में, आप लोग देखा नहीं, इसलिए वहां अभी भी आसन रखा गया है, कोई विशेष लोग आ जाएगा तो फिर बैठेंगे, अभी पहचान नहीं सकते, वो भी कभी आके चले जाते होंगे। तो लेकिन यदि कोई ऐसे ही महाभागवत की कृपा को प्राप्त करेगा तो उसके उद्धार हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है, बहुत रेयर एग्जाम्पल से है। इसमें जनरल लोगों के लिए उपदेश दे रहे कौन, प्रहलाद महाराज, कि भक्ति प्रारंभ कर दो बचपन से ही है? और जब तक हमारा सुस्त ने शरीर हृष्ट पुष्ट रहे और रोग व्याधि ग्रस्त न हो, वृद्धावस्था को प्राप्त न हो, उस समय से भक्ति शुभारंभ कर देना चाहिए। को व्यर्थ तुष्णा विसृजत प्राणेभ्योपि जैप्सित जकिणातु अशुभि पृष्ठ तस्कर सेवक वणिक। धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे साधु इसे मधु से भी अधिक मीठा समझते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा को परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में चोर, व्यावहारिक नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राण को भी बाजी लगाकर धन प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण बहुत पक्का उदाहरण है। सब कैसे जो सैनिक है जो वो मिलिट्री में ज्वाइन करता है तो उसको प्रकृति में इसे इच्छा नहीं होता है, कभी भी इसकी मृत्यु हो सकती है, कभी जाएगा युद्ध करने मृत्यु इसका शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी वो मिलिट्री में ज्वाइन करता है। जो कहीं नौकरी नहीं मिलता तो कहां ज्वाइन कर लेता, मिलिट्री में ज्वाइन कर लेता है। ये कलयुग में कोई क्षत्रिय जन्म से नहीं है, कड़ो शूद्र संभवा, फिर भी वो जानते हुए जीवन को बाजी रखकर फिर वो नौकरी स्वीकार कर लेता है। बार कोई चोरी करता है, डकैत करना जाता है तो उसका भी जानता है कि पकड़ा जाऊंगा तो कहां जाऊंगा, जेल में जाऊंगा, पिटाई खाऊंगा, और ये सब जानते हुए फिर भी चोरी करता है, फिर धन को एकाठी करना चाहता है, चोरी करने हैं। व्यवसाय जो व्यापारी है कितना कष्ट सहता है, शीत गर्मी धूप सब सहन करके, बा आपके बॉम्बे में एक्सपीरियंस है कि धन के लिए लोग कैसे जाते हैं ट्रेन के अंदर है, ऐसे ही झोल के जाते हैं, खड़े होकर ऐसे ही पकड़ के कहीं जाते, कोई नौकरी करके फैक्ट्री में कोई कुछ बिजनेस करता है कहीं, कैसे जाते लोग, किसके लिए जाते हैं, केवल धन के लिए है? इनकी जीवन ऐसा ही है, ऐसे ही जाते, ठीक से खाना भी मिलता नहीं, ठीक से खाते भी नहीं, खुद एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी ट्रेन ज्यादा भीड़ होने से कभी कभी न्यूज में आता है कि वो गिर गया है, कहीं धक्का लग जाता तो दो चार गिर जाते साइड में, बस समाप्त हो जाता है। कोई कोई तो और विदेशों में भी बहुत प्रभुपाद ने कई उदाहरण देते हैं, अमेरिका में कहीं बहुत दूर तक जाते हैं, 150 किलोमीटर लगभग जाते हैं ट्रेन में, डेली जाते आते, केवल किसके लिए, धन के लिए। वैसे वो ट्रेन बहुत स्पीडी होते हैं लेकिन फिर भी उनको ऐसा ही जाना पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज ने एक परफेक्ट एग्जाम्पल देते हैं, देखो धन विषय जो विषय व्यक्ति के लिए कितनी प्रिय होता है, ये जो धन, ऐसा कौन होगा धन संग्रह करना नहीं चाहता, जैसे मैं कहा कि प्रारंभ से ही मनी स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन, इसलिए सभी लोग धन के पीछे संसार में लगे हुए हैं, इसके लिए समय को वृथा गंवा रहे हैं। कथं प्रियाया अनुकंपिताया संगं रहस्यं रुचिरांश मंत्रां सुहुत्सु तत्स्नेह सीता शिशूनं कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। तो आगे इतने बड़ा श्लोक पढ़ने टाइम शॉर्टेज है, तो प्रहलाद महाराज आगे कहते कि भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेही हो, जिसका हृदय सदैव उनके चित्रों से पूरित हो, किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। गृहस्थ की यदि वो फैक्ट्री में जाता कहीं भी काम करने से, लेकिन हमेशा घर की चिंतन उसकी आता, घर में क्या चल रहा है उसको हमेशा, आजकल तो मोबाइल हो गया तो तुरंत बीच में कई बार फोन करता होगा, क्या चल रहा है, वो फैक्ट्री वहां पर फिर भी अपने वाइफ को फोन करेगा, किसी बच्चे स्कूल में गया तो उसको भी फोन करेगा, ऐसे ही उसके चिंतन हमेशा घर में लगा रहता है। चिंतन कहां लगना चाहिए है, सवई मन कृष्ण पदारविंद है, लेकिन इनकी मन कहां लगा रहता है, संसार के जो लोक है मन सब समय विषय में लगा रहता है। विशेषतया पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है, कथं प्रियाया अनुकम, कैसे भूल जाएगा अपने प्रिया को है? जिसने इसको खाना बनाकर खिलाई है आने का टाइम, ऑफिस जाने का टाइम, एकांत में इनको कई प्रकार की सलाह देती है, इसकी इंद्रिय तृप्ति के सभी जो वासनाओं को इसने पूर्ण करती है, कौन, पत्नी है। अच्छा कुकिंग करके खिलाती है और खाने के बाद फिर वो बहुत मधुर भाषा में बोलती है, उसकी जौन इच्छा को वही पूर्ण करती है, और ऐसे स्त्री को कौन भूल सकता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे कौन भूल जाएगा। और नारद जी से जैसे सुने इसको दोहरा रहे, 5 साल के बच्चे हैं लेकिन फिर भी बता रहे परफेक्ट नॉलेज है। विशेषतः पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है, अपने पति को एकांत में सदैव प्रसन्न करती है, भला ऐसा कौन होगा ऐसे प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति को त्याग कर सकता हो है? गृहस्थ जीवन में, संसार में कौन त्याग सकता है? छोटे छोटे बालक तोतली बोलते हैं, तोतली बोलते हैं, और तोतली वाली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, और उसके पिता सदैव उनके मधुर शब्द के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है? किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय है। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है, और अपने ससुराल में रहती हुई भी वह उसके मन में बसी रहती है, है? किसके? यदि भी शादी करा दी, दे दिया है लड़की को, लेकिन फिर भी वो लड़की की बचपन में कैसे मीठी बोलती थी, मेरे है? कैसे इनकी गोद में बैठ जाती थी, मीठे बात करती थी, गले पकड़ लेते, तो वो सब याद आता उसको, है? उस बसी रहती, फिर भी प्लान करती कि मेरे लड़की के घर में कब जाऊंगा, कुछ लेके जाऊंगा, है? कुछ क्या लेके, कुछ वो कुछ सोना का अलंकार बनाकर लेके जाऊंगा, है? हमारे हारा प्रभु के कंग्रीगेशन, सो रहे हारा प्रभु, हारा प्रभु के कंग्रीगेशन में बोलता है वो क्या सोना वाले, सोना सोना काम करने वाले हैं, तो वो सोचते हैं कि सोना का गहना बनाकर कहां लेके जाएंगे, लड़की के घर में कैसे लाएंगे, राधा रसबेरी घर, राधा रसबेरी की बना के ला के देते हैं, है? जब भक्त नहीं तो वो भक्त है तो वो इनको ट्रेनिंग दिया है, इसलिए वो कभी कभी भगवान के लिए लाते होंगे, नहीं तो प्रहलाद महाराज कहते कि इस प्रकार कौन अपने पुत्री को भी भूल नहीं सकता, शादी देने के बाद भी, इसके ससुराल में जाने के बाद भी इसका पिता इसको भूल नहीं सकता, है? उसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं, और तमाम पशु तथा नौकर भी होते हैं, भला ऐसे आराम कौन छोड़ना चाहता है? आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरफ अपने चारों और धागा बुनकर उसमें बंदी, अपने बंदी बन लेता है, संसार को स्वयं सृष्टि किया है, शादी किया, शादी करने का अर्थ क्या, स्त्री शब्द का अर्थ है जो विस्तार करती है, है? शुरू हुआ उसे, फिर बच्चे आ गए, फिर वो अपने आप बच्चों के लिए फिर सब धन को और परिश्रम करके धन इकट्ठी करेगा, फिर आस्ते आस्ते प्रॉपर्टी खरीदेगा, फिर है बैंक बैलेंस बढ़ाएगा, तो आस्ते आस्ते वो स्वयं जान करके इतना बड़ा संसार रचना किया और फंस गया उसके अंदर, उससे निकलना मुश्किल हो गया है। सुने ना वो बाबू भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने कहते थे कि लेंगुठा बाबा की कथा है, एक बाबा था क्या, एक था संसार छोड़कर छोड़ दिया था संसार, कैसा अवसर बाबा जवान के प्रारंभ से संसार छोड़ के प्रहलाद महाराज की शिक्षा पढ़ाई किया और वैराग्य आ गया, संसार के प्रति छोड़ गया, छोड़ दिया, चला गया, है? जाकर जमुना किनारे केसी घाट के आगे थोड़ा वो एक पेड़ के नीचे ही रहकर भजन करता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, एक ही कौपिन था, दो कौपिन नहीं थे, एक ही कौपिन पहन के रहता था, जमुना में स्नान करने के टाइम में वही कौपिन के धो के बाहर सुखा देता था, सूख जाने के बाद पानी से उतरता था, उठकर आके कौपिन पहन लेता था, है? तो ये एक सेठ ने देखा दिल्ली की जा रहा था, दिल्ली का सेठ कहा कि अरे बाबा के पास सिर्फ एक ही कौपिन है, तो मार्केट में गया, दो कौपिन अच्छे नया कपड़ा से फर्स्ट क्लास कौपिन बनाकर आकर बाबा को प्रणाम करके भेंट दिया, बाबा दो कौपिन रखो, बाबा खुश हुआ, अच्छा रखा, उसको आशीर्वाद दिया, और नौ दो कौपिन को उन्होंने जो पेड़ में रहता उसके ऐसे फूफर था उसके अंदर में रख दिया साइड में, है? और उसके अंदर कौन रहता था, चूहा रहता था, दूसरे दिन जो स्नान करके सोचा कि नया कौपिन पहने का लेते ही देखा कि इसमें होल हो गया, अरे नया कौपिन हर होल कर दिया, चूहा काट दिया, बड़ा डिस्टर्ब हो गया, भजन में डिस्टर्ब आ गया, है? भगवान हरे कृष्ण क्या बोलेगा, वो कौपिन देखते रहे ऐसे काट दिया कैसे, इतने मैंने विचलित हो गया, कोई वो परिक्रमा करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति जाता था सर दिल्ली का कोई लोग, बोला बाबा क्या इतने क्या चिन्ह, नहीं देखे ना मेरा नोक को, एक जो कौपिन नया नया काल मुझे मिला था और इसमें होल बना दिया, बोला कौन बाया होल, चूहा, अरे चूहा को क्या डरते हो, बिल्ली रखो, है बिल्ली रखो चूहा भाग देगा नहीं आएगा, एक बिल्ली रखो पास में यहां रहेगा घूमेगा, तो बेचारा बिल्ली रख लिया, बिल्ली तो फिर म्याओ म्याओ ये जो बैठकर हरे कृष्ण करता था, तो बिल्ली आगे चारों साइड घूमने लगा इसके शरीर में, है म्याओ म्याओ म्याओ, अरे दूसरा दिन आदमी आया तो बोला कि क्या मुझे बुद्धि दे दिया, बिल्ली रखा मुझे भजन करने नहीं दे रहा, चूहा तो भाग गया, चूहा नहीं आएगा बिल्ली देख रहा, लेकिन ये बिल्ली परेशान कर रहा, बोला यही बात है, अब बिल्ली को भगाने के लिए क्या रखो, है बिल्ली को भाग, बिल्ली को खाएगा क्या खाएगा, बिल्ला बिल्ली क्या खाएगा, दूध पिएगा ना, है बिल्ली को दूध दूध चाहिए, दूध थोड़ा दे दोगे कटोरे में, दूध खाएगा शांत बैठेगा, बोले अच्छा फिर वो बोला ठीक है, गाय फिर जाकर के सीमा की लाया, कोई दिया बाबा को, ठीक है बाबा गाय रखना चाहता, दान कर दिया गाय ले। गाय जो आया था दोपहर का हो गया, गाय अब जोर जोर से आवाज करने लगा, हम्मा हम्मा, अरे ये क्या, वो बाबा फिर आ रहा था, ये क्या हो गया, अरे भाई गाय को भी तो खाना चाहिए ना, तू पता नहीं गाय खाएगा ना, कुछ घास तो देना पड़ेगा ना, तू जो हरे कृष्ण करेगा तो उसको गाय को तो कुछ खिलाना पड़ेगा। तो बोला मैं कैसे हरे भजन छोड़ के गाय खिलाऊं, बोला तुम कुछ मत करो, ग्वाला ले वो गाय चराएगा। फिर दूसरे एक लड़का को इसे ले आया, लड़का तो गाय चराने जाता था लेकिन दोपहर को उसको भी खाना चाहिए ना, डंडा लेकर आएगा, बाबा खाना कहां है, है? खिलाओगे नहीं तो मतलब तो चलो तनख्वाह दे ना दे, लेकिन खाना तो खिलाना पड़ेगा ना एक टाइम, मैं तो तुम्हारा गाय चराने में रहूंगा तब खाना कौन खिलाएगा मुझे, खाना लाओ। चिल्लाने लगा, डंडा पीटने लगा सामने, तो बोला अरे, फिर बिला पूछ को क्या करना, ये तो एक तुम ग्वाला रखने वाला, वो तो इसे मेरे को परेशान कर रहा, मैं कहां से खुद का खाना कहीं मधुकरी में कोई दे जाता खा लेता हूं अपने आप, अरे इसको कैसे खिलाऊं। बोले अरे तुम इतनी झंझट में क्यों फंसता है, पत्नी शादी कर लो, पत्नी सब कुछ संभाल लेगी, हैं? जब शादी कर लोगे पत्नी आ जाएगी, अब पत्नी सब झंझट समाज लेगी है, सब संभाल लेगी, क्या कैसे गाला खाए सब कुछ, तुम क्यों इसे बाबा हरे कृष्ण करेगा, तो पत्नी सब संभालेगी, तुम बड़ी को हरे कृष्ण करना है। फिर शादी कर लिया, अब पत्नी आ गई तो पत्नी कहे कि बोला क्या है, मेरे को ऐसा डिमांड है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, हरी बैठ के रही हरे कृष्ण करने चले गए, जाओ बैठने नहीं दिया उधर, भजन करने नहीं दिया, भागा जल जाओ कहीं से पैसा संग्रह करो मांगो, है कुछ सिखा नहीं, प्रवचन प्रवचन देने से पैसा आएगा, है प्रोफेशनल रिसाइटर बना दिया उसको, जाओ धन का धन लाओ प्रोफेशनल, कहीं को भागवत सप्ताह करो, कहीं रामकथा करो, है कुछ करो, पैसा लाओ धन बहुत आएगा, लाकर फिर चलाओ परिवार, मेरा डिमांड सुनो विचार। फिर पत्नी के बात सुनते फिर बोला सही बात है, ये तो कथा कहने से क्या लिया है, तो फिर भजन छोड़ के फिर कथा में शुरू जाना चाह, कुछ पैसा भी लाया, लेकिन उसके गुरु जी ने देखा था बैरागी शिष्य 10 बार, हमने कम से कम 20-25 साल के बाद घूम घूम के कहीं तीर्थ भात्र, कल मेरा एक शिष्य था जमुना किनारे एक लंगूठा पहन के रहता था, क्या उसकी हालत थोड़ा देखता हूं, घूम घूम के आया, लोगों को पूछा कहां गया मेरे शिष्य, पेड़ का नीचे बैठ के जप करता था उसका, बोला आपका शिष्य जो सामने जो मकान देख रहा ना बिल्डिंग, अब बेचारा ढूंढ पहुंचा उधर, गुरुजी बोला देखा कि शिष्य पूरा आराम चेयर में बैठा है, पेट बाहर निकला ऐसे बैठा, चारों साइड में कम से कम 10-12 बच्चे घिर के बैठे हैं और उसके पत्नी बाजू में खड़ी है, तो लेकिन वो बैठा था पहचान किया गुरु जी आ गए, तुरंत आसन से उठकर प्रणाम किया, तो उसे पत्नी बच्चे से बोले क्या, अरे प्रणाम करो प्रणाम करो गुरु जी आ गए, तो गुरु जी कहे कि अरे तू तो इतना बैरागी था, लंगूठा पहन के रहने वाला था, तुम्हें ये सो क्या हो गया, बोला गुरु जी यही तो आपका गीता का संसार है, ये गुरु जी ने गीता भी दिया था उसको प्रारंभ से पढ़ने के लिए, डेली पढ़ने के लिए, वो गीता को भी काट दिया था लंगूठा के साथ, उसको भी काट दिया था, किसको, गीता की भी साइड में काट दिया था चूहा ने, तो गुरु जी ने बोले कि अच्छा तुम ऐसे कैसे हो गया, थोड़ा बताओ मुझे, तो बताया था, बोला ये किस लिए हुआ ऐसा ही, क्योंकि तुमने असत्संग किया, सलाह लेना था किससे, साधु से, और तुम सलाह लिया कोई भौतिकवादी व्यक्ति संसार में घूमने वाला भटकने वाला व्यक्ति को, उसी से सलाह लेगा तो वो ऐसा ही सलाह देगा, है तो इसलिए असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, है स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर, जो कृष्णों की अभक्त है, जो स्त्रियों के पीछे भटकने वाला पुरुष है, ये दोनों असत्संगी है, इनसे संग नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यही असत्संग है, स्त्री संगी एक असाधु और कृष्ण अभक्त आर, ये मुख्य रूप में दो असत्संग है, इसे बचना चाहिए, नहीं तो संसार में फंस जाओगे। प्रहलाद महाराज ने कितने सुंदर लॉजिकली समझाए, फंस गया बात है, गृहांध कुप में फंस गया, फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं कि ये कितना नंबर श्लोक, 12 नंबर श्लोक तक हो गया पढ़ाई, तो इसलिए अब जानना चाहिए कि खुद जानबूझकर ऐसा ही बंदी घर बनाकर उसमें फंसना नहीं चाहिए, रेशम कीड़े की तरफ है, अब इसे सतर्क रहना चाहिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भक्ति किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे सरल उपाय किसमें भक्ति करना, ब्रह्मचर्य रहकर भक्ति करना, लेकिन भगवान फिर भी कहते कि स्त्री अंग वैश्य तथा शूद्र तेपी जानती परम गति में, ये भी परम गति को प्राप्त करते, स्त्री हो वैश्य हो या शूद्र हो। लेकिन भक्ति यदि वो प्रारंभ किया प्रहलाद महाराज की तरफ, राक्षस कुल में जन्म होकर भी बचपन से भक्ति प्रारंभ कर दिए, इसलिए उनकी जीवन सफल हुआ। कुंती महारानी ने भक्ति की, द्रौपदी ने भक्ति की, कई भक्ति भक्तिन के उदाहरण भी है। वो पुरुष के शरीर में हो, स्त्री का शरीर में हो, लेकिन भक्ति करना उसकी मुख्य कार्य होना चाहिए, बचपन से भक्ति प्रारंभ करें। हैं? ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसकी? हैं?
हरे कृष्ण। अभी आश्रम में ज्यादा चूहा हो गई, पहले मच्छर था, मच्छर तो गया, अभी खटमल और ये चूहा ज्यादा हो गई, इसको मारना ना छोड़ देना चाहिए?
शांत रहो, शांत बोलो। जो प्रभुपाद जी के पिताजी क्या करते थे, उनके कपड़ा की दुकान था, बहुत चूहा थे उनकी कपड़े की दुकान में, है क्या करते थे वो? अरे गोरु मंदे क्या करते थे, लीलामृत पढ़े ना, क्या करते थे? ये बर्तन में लाकर रोटी सब टुकड़े करके उसे दूध मिलाकर रख देते थे, बोलते थे आओ 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 आओ, सारे चूहा आकर रोटी खा के चुपचाप बैठे, कपड़े की दुकान में इतना चूहा बैठा रहता था, सब लोग बाजू वाले जो दुकानी थे, व्यापारी थे, हैरान हो जाते थे, बोले कैसा व्यक्ति है कपड़े की दुकान में इतने चूहा। तो मजाक करने के लिए सब अपने अपने दुकान में जिसके पास चूहा रहता सब लाके इनके पास छोड़ के चले जाते थे। लेकिन आप ऐसे महाभागवत वैष्णव यदि हो पाएगा तो कोई समाधान अपने आप हो जाता है। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा है। विद्या विनय संपर्णे ब्राह्मणे गभी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यदि आपके मन में ऐसे मैत्री भावना, सभी जीवों के प्रति दया की भावना, गौरमोहन देगी तप होगा, फिर कोई समस्या नहीं करेंगे जीव आपको। विशेष रूप में जब धाम में रहते हो, ब्रज में रहते हो, ब्रज में तो सांप भी भक्त है। एक दिन राधा रानी ने मैंने बरसाना में जा रहे थे, भगवान मानिनी होकर भक्ति थी, आगे चल रहे थे, भगवान कृष्ण पीछे चलते थे, लेकिन वो पूरे गुस्से में थी, देख नहीं रहे थे पीछे राधा रानी, सामने एक देखा कि सांप देखा कि मेरे प्रभु को कितना है कष्ट हो रहा है, धूप में जा रहे हैं लेकिन ये सुनते नहीं है, सामने आ गए फणा टिक्की एकदम राधा रानी के सामने, पकड़ गए तुरंत ही घूम के आलिंगन कर ली, किनको? कृष्ण को भय से। तो सेवा में लगाया ना अपना वृत्ति को, राधा कृष्ण को मिलन में तो सांप भी सहायता किया है। ब्रज के सांप भी भक्त होते हैं, लेकिन फिर भी सांप बिच्छू यदि ऐसे भक्त नहीं है, अभक्त है, धाम में नहीं अन्य स्थान पर है, फिर इनको क्या करना चाहिए? प्रहलाद महाराज कहेंगे आगे स्तुति में, ये सांप बिच्छू आदि दुष्ट प्राणियों को जब बद हो जाने पर भी संतों को, संत पुरुष भी आनंद लेते हैं कभी कभी, ऐसा ही दुष्ट हिंस्र पशुओं की बद्ध होने से। इसलिए समय देखकर, स्थान काल पात्र देखकर आपकी भक्ति की कौन सा स्थिति है, तो वो सब देखकर फिर आपको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, बिना कारण से किसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन यदि वो हमारे कुछ अनिष्ट करता, भगवान की सेवा में बाधा डालता है, तो दूसरे वैष्णव के प्रति विपद है। प्रभुपाद जी ने गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलने के लिए, कहा मायापुर में जब थे, और उनके अपने छत के ऊपर प्रथम नहीं, वो आज भी बिल्डिंग है वहां खड़े कर देख रहे थे, लेकिन अभय चरण देव उस समय प्रभुपाद जी के नाम तो जा रहे थे, चल के नीचे चल रहे थे जमीन में, पास में क्या आ गया, एक सांप आ गया थोड़ा दूर में ही, हो सकता है किसी मुहूर्त में आकर काट सकता है किनको। तो सब लोग सोचते क्या करेंगे, सभी वैष्णव ब्रह्मचारी सब लोग देख रहे हैं इधर उधर, क्या करेंगे क्या करेंगे, किसी कुछ समाधान नहीं आ रहा था। लेकिन इमीडिएटली भक्ति ध्यान सरस्वती ठाकुर ने कहे, क्या कहे? किल इट, मारे इसको तुरंत, ये वैष्णव का आघात करेगा तो ये वैष्णव का जीवन इससे मूल्यवान है, इसलिए मध्यमाधिकार स्तर पर कम से कम हम लोग ऐसे करना चाहिए। क्या भगवान की सेवा के लिए चूहा आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं? भगवान आम के लिए बड़े है कि चूहा बड़ा है? चूहा तो उधर रह रहा ठीक है, और कार्तिक महात्मा जैसे जाएगी कभी घी का बत्ती खा के खाने के लिए जाएगा, और चूहा उसका निश में क्या लग गया आग, और बत्ती उससे और थोड़ा ऊपर उठ गया, तो भगवान कहे कि अच्छा किया ये बत्ती ने आगे जलाया कार्तिक महीना में, इसको अपने धाम में भेज दी। भगवान तो बड़े दयालु होते हैं। लेकिन आपको स्थान काल पात्र देखकर इसका समाधान करना चाहिए. यूज योर इंटेलिजेंस. ओके, और कोई प्रश्न है? सब प्रसाद के टाइम हो गया, लेट हो गया क्लास. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.